سیکٹر آفیشلز اسپیشلی اس کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ تقرریاں صاف شفاف انداز میں اور میرٹ پر ہوں گی اور اس کے اوپر ایک کڑی نگرانی کا طریقہ کار جو ہے اس کی بھی تجویز دی گئی ہے تاکہ جب یہ ایسے آفیشلز کو ہائر کیا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ نہ ہو.
اس کے علاوہ متین حیدر یہ بتائیے کیونکہ اس حوالے سے ہمارے پاس دو اور بھی ہوں گے تجزیہ کار, لیکن خصوصی طور پہ آپ سے یہ سوال, آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان میں, اور پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کئی اس طرح کے واقعات ہوئے جس میں بلوچستان میں جو معصوم ہزارہ برادری ہے ان کو قتل کیا گیا, شیعوں کو قتل کیا گیا. آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ اسماعیلیز کا قتل جو ہے اس نے سرکار کو فوج کو کیوں ہلا دیا ہے؟
جی بالکل, آپ نے بہت اہم سوال یہ پوچھا. اس نے سرکار کو اور فوج کو نفیسہ اس لیے ہلا دیا ہے کہ تین چار پہلو ہیں. ایک تو ہمارے جو گلگت بلتستان ہے, شمالی علاقہ جات جس سے ہم پہلے کہتے تھے, وہاں کا علاقہ حنزہ, وہاں پہ اسماعیلیوں کی بہت بڑی تعداد ہے. اگرچہ کہ اسماعیلی فرقہ پاکستان میں یا اسماعیلی برادری جو ہے وہ انتہائی پرامن مسلمان ہیں, انتہائی پرامن شہری ہیں, اور ان سے کسی قسم کی شدید رد عمل کی کوئی توقع نہیں, لیکن فوجی قیادت کو, اس کی قیادت کو اس لیے ہلا دیا گیا ہے کہ آغا خان کا جو نیٹ ورک ہے پاکستان میں, آغا خان فاؤنڈیشن, اس کے پاکستان میں جو ہے وہ سماجی بہبود کے بے شمار پروگرام ہیں, اور یہ وہ واحد کمیونٹی ہے جن کا کسی قسم کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں, کسی قسم کا کوئی تخریبی, کسی قسم کا اور شر پسندی پہ مبنی, کسی قسم کا کوئی, یہ انتہائی شریف النفس کمیونٹی ہے. اور ان کی جو فاؤنڈیشن ہے آغا خان فاؤنڈیشن, پاکستان میں تعلیم, صحت اور سماجی بہبود کی سرگرمیوں کے علاوہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں, لیکن اس کی قیادت کو اس لیے ہلا دیا گیا کہ چونکہ ان کی اکثریت ہے حنزہ میں, اور یہ واقعہ کر کے اس کمیونٹی کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ کمیونٹی اشتعال میں آئے, اور جو پاکستان اور چین کے اقتصادی راہداری کا منصوبہ ہے یہ کسی طرح سیبوتاج ہو پائے. اور یہ ظاہری بات ہے اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا, پہلے واقعات ہوتے رہے, آپ نے صحیح کہا, ہماری عیسائی برادری جو ہے اس کے اوپر حملے کیے گئے, اپنے مومن بھائی ہیں ان پہ حملے کیے گئے, ہزارہ برادری ہے اس پہ حملے کیے گئے, اور کوئی ایک جگہ نہیں تھی, اکراس پاکستان, پورے پاکستان میں یہ کیے گئے. تو اس کی قیادت کو اس لیے جو ہے وہ دھچکا شدید لگا چونکہ کراچی میں آپریشن جاری تھا, اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کراچی اب بہت محفوظ ہو چکا ہے. دوسرا اس کا رد عمل اس لیے بھی تھا کہ جو ایم کیو ایم کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا تھا, اور جو ایم کیو ایم کے بعض افراد کو حراست میں لیا گیا تھا, ان سے بعض جو تفتیش میں چیزیں سامنے آئی تھی, بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے لنکس نکلے.
جی ہاں, نہیں متین حیدر, آپ نے ایک بڑی اہم بات کی, آپ نے اس وجہ سے اہم بات کی. متین حیدر, آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کیونکہ یہ ہمارا ایک پورا سیگمنٹ ہوگا جو کہ ہم تقریباً 20-25 منٹ بعد اس پر بات کریں گے. آج واضح انداز میں سرکار نے رو پر بلیم ڈالا ہے, اس پر ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم چلتے ہیں کراچی جہاں سے ہمارے ساتھ سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سربراہ احمد چنوئے لائن پر ہیں, وہ اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور چنوئے صاحب, آپ کو خوش آمدید.
جی السلام علیکم,
شکریہ آپ کی آمد کا, اور بہت ایک اہم جو موقع ہے اس پر ہم آپ کو ہم نے اس لیے مدعو کیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے خفیہ ادارے ناکام رہے اس جو یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو میٹنگز ہوئی ہیں, اور یہ بہت اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد کیا فیصلہ کیا گیا ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ جسے کہتے ہیں یا خفیہ معلومات کا تبادلہ, اس کو کیسے بہتر بنایا جائے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے خفیہ ادارے ناکام رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو ناکامی نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اس کو اس انداز میں لینا چاہیے کہ کراچی دہشت گردی کا شکار ہے, تھا, اور اس وقت بھی کراچی دہشت گردی کا شکار ہے. کہ جب ضرب عزب پاکستان کے ان علاقوں میں چل رہا ہے جو پاکستان کے نارتھ ویسٹرن پروونس کہلاتا ہے, اور اس کے بعد وہاں سے ظاہر ہے کراچی ایک سیف ہیون ہے, کراچی ایک اتنا بڑا شہر ہے کہ جہاں दहशत गर्द जो है वो पनाह ले सकते हैं मुख्तलिफ जगहों से। और इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि कराची एक इतनी बड़ी आबादी वाला शहर है, फिर एक इतना बड़ा रकबे वाला शहर है कि इसको मैनेजमेंट जो है वो इसकी बेहतर अंदाज से और करने की भी जरूरत है। और फिर एक सबसे बड़ी बात यह है कि कराची का 40% आज भी रूरल एरिया कहलाता है, जो कराची के आउटस्कर्ट्स हैं, और वही जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग पिकेट्स हैं, वही सेंसिटिव एरिया है और वही सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं वो एरियाज। तो एजेंसीज अपनी भरपूर कोशिशों के साथ इस बात पर कोशा है कि किसी तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा हो, इनका जो है वो काम तमाम हो, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स रह जाते हैं कि जो एक मुसलसल जंग है दहशतगर्दी के खिलाफ, जहां मुसलसल जंग चल रही हो दहशतगर्दी के खिलाफ, वहां इस किस्म के वाकयात जरूर हो सकते हैं और उनको मैनेज और उनको कंट्रोल करके जो पिछले खामियां हैं उनको दूर करने की जरूरत हमेशा बाकी रहती है। तो मैं समझता हूं कि इन वाकयात से हमारी न सिर्फ सेंसिटिव एजेंसीज ने बल्कि हमारी करंट जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने उसको इवेल्यूएट किया है, उसको इवेल्यूएट करने के बाद किस तरह और सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है उस पर जोर देने की बात की है।
चिनोई साहब, अभी मतीन हैदर ने एक दिलचस्प बात की. आप भी जानते हैं एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरेगा, ग्वादर से लिंक करेगा. आपका क्या ख्याल है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि गिलगित में बहुत ज़्यादा इस्माइली रहते हैं, क्या इस्माइलियों को टारगेट कर कर कोशिश की जा रही है कि ये कॉरिडोर ना बने?
देखिए ये सारी चीजें कुछ भी कहना काबिल वक्त है जब तक मुकम्मल तौर पे तहकीकात सामने ना आ जाए। अपेरेंटली लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे जा रहा है और उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में कराची में जो दहशतगर्दी है वो एक सॉफ्ट टारगेट की तरफ हमेशा जाती है कि जहां टारगेट सॉफ्ट होता है वहां दहशतगर्दी होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो हम अभी इसको फिलहाल एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर ले लें। देखिए इस बात को भी अच्छी तरह समझ लें कि कराची के अंदर जो है वो तकरीबन 300 ऐसी बसें हैं जो रोजाना सुबह मुख्तलिफ कम्युनिटी लेवल पर निकलती हैं। उनमें सीधे साधे एक ऑर्डनरी क्लास के आदमी हैं, जो लोग हैं उसमें ख्वातीन मर्द बच्चे सारे शामिल होते हैं, वो अपने अपने कामों पे जाते हैं। कम्युनिटी के जो बड़े हैं वो इस किस्म की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज अपनी कम्युनिटी के मुतवसत तबके के मेम्बरान को देते हैं और इस फैसिलिटी का मकसद ये होता है कि वो अपने कामों पर ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएं और उसी ट्रांसपोर्ट में वापस आ जाएं। और ये 300 के करीब बसें जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकलती हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं। जाहिर है ये मुमकिन नहीं है कि इन बसों को हम वक्त मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाए और इसमें ये इस किस्म के वाकयात जो हैं या इस किस्म के हादसे जो हैं वो मैं समझता हूँ दहशतगर्दों की नज़र में होते हैं कि ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं और यहाँ हम जो है वो इन सॉफ्ट टारगेट्स को जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो मैनेजेबल भी ज़रूर हैं और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इनको मैनेज करने की बात कर रही हैं। रहा सवाल हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ इस पाकिस्तानी कौम को इस बात से अब नहीं रोक सकती कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बने, लोगों की प्रॉस्पेरिटी हो और लोग जो हैं वो खुशहाली की तरफ जाएं।
अच्छा जी, हम अनकरीब मतीन हैदर को खुदाफिज कहेंगे. आप हमारे साथ रहें. लेकिन मतीन हैदर, जाने से पहले आप इस पर ज़रा कमेंट करें. आपके इल्म में है कि अमेरिका के सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन ने भी कल बात की थी कि अगर अमेरिका से कोई मदद चाहिए तो वो बिल्कुल उसको देने के लिए तैयार है. आप क्या समझते हैं कि ये जो खुफिया मालूमात का तबादला है, इस सिलसिले में अमेरिका से मदद लेना मुनासिब है?
जी, इस मौके पर बिल्कुल अमेरिका की जानिब से ना सिर्फ इस मरतबा ऑफर की गई है बल्कि माजी में भी कुछ जो आम दहशतगर्दी के इंतहाई संगीन वाकयात हुए उससे भी अमेरिका ने ऑफर की थी कि इन वाकयात की तहकीकात के लिए अमेरिका मदद करने को तैयार है। जाहिर है कि इस हवाले से अमेरिका में एक इदारा है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। माजी में हुकूमतें इससे तावन तलब करती रहीं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मामलात में पाकिस्तान आके तहकीकात भी की, बाज दहशतगर्दी के वाकयात की भी तहकीकात की, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान और अमेरिका के खुफिया अदारों के दरमियान अगेचे के मालूमात का तबादला होता है लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी सलामती के हवाले से मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे कुछ लीड्स जो हैं वो अमेरिकन को देंगे। कुछ कराची चूंकि इंतहाई हसास तरीन इलाका है तो इस पर जाहिर बात है कि हमारी सियासी जमातों की जानिब से भी रजामंदी नहीं होगी और सलामती से मुतल्लिक जो कौमी इदारे हैं वो भी शायद ये फौरी तौर पे एक्सक्यूज मी वो भी शायद फौरी तौर पे ये पसंद ना करें कि अमरीकी तहकीकती इदारों को कराची के मामले में इन्वॉल्व किया जाए, चूंकि कराची का जो मामला है अमन अमान का, सिक्योरिटी का, वो इंतहाई बिगड़ चुका हुआ है। और जो है अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे पब्लिकली ये कह रहे हैं कि इसमें गैर मुल्की मुदाखलत हो रही है, तो ये पाकिस्तानी तहकीकी इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं ये खुद ही इसकी तहकीकात कर रही हैं। और मैं नहीं समझता कि अमरीकी इस पेशकश को कबूल किया जाएगा, पाकिस्तानी इदारे खुद ही तहकीकात करेंगे। लेकिन जितना कराची में शोर मचाया गया कि वहाँ अमन अमान कंट्रोल हो चुका है, रेंजर्स का ऑपरेशन है, इस वाक़े ने ये तमाम के तमाम सिक्योरिटी के ब्लंग बांग दावे जो हैं वो सब बेनकाब कर दिए हैं। जी नफीसा,
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है मतीन हैदर जो इस्लामाबाद में होते हैं, सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार हैं। आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक आई डी खुदा
ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं जो बुध को कराची में इस्माइलियों पर हमला हुआ था और जिसकी वजह से आज भी तदफीन हो रही है। हमारे साथ सीपीएलसी के चीफ अहमद चिनॉय हैं, उनसे हम बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। चिनॉय साहब, ये बताइए कि जो मीटिंग हुई है कराची में, इसके बाद क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि कल हमने सुना कि कुछ नुक्ताचीनी की जा रही थी सिंध हुकूमत पर, और कहा यह जा रहा था कि सिंध के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उमूमी तौर पे आपने क्या देखा? क्या जो क़यादत जो आई थी कोर कमांडर्स और जनरल राहिल शरीफ, वो मुतमईन नज़र आते थे सिंध हुकूमत के साथ, और उन्होंने कुछ तब्दीलियों भी का भी जिक्र किया, कोई तब्दीलियां भी होना जरूरी हैं कराची में?
देखिए, जहां तक हम कारकर्दगी की बात करते हैं, 5 सितंबर 2013 को ऑपरेशन का आगाज होता है और उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का जो अरसा गुजरा है, उसके अंदर अगर हम मजमुई तौर पर देखें तो मजमुई तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर हुई है। जहां कराची में रोजाना 15 से 20 अफराद लुकमा अजल बन जाते थे, वहां एक आधा जो है वो एक नॉर्मल रूटीन में काम आ गया था, और जहां अगवा बराए तवान के 25-26 केसेस हर वक्त मौजूद होते थे, वहां एक आधा केस जो है वो अगवा बराए तवान का है। जहां बत्ताखोरी अपने पूरे उरूज पर थी, वहां मैं समझता हूँ कि बत्ताखोरी भी जो है वो 70% से ज्यादा कम हो गई। तो ये सारे अगर मजमुई सूरत हाल देखें तो मजमुई तौर पर कराची एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा रहा था, एक बेहतर चकल की तरफ जा रहा था। ये इन्हीं तमाम बातों के बाद में मैं समझता हूं कि जो दहशतगर्द हैं या जो एक तीसरी कुव्वत है जो इस बात में दिलचस्पी रखती थी कि कराची का अमन अमान किसी सूरत में बेहतर ना हो, उन्होंने इस मौके पर स्ट्राइक किया है। तो जहां इस मौके पर स्ट्राइक किया जाता है, वहां मैं नहीं समझता कि हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की या सिंध हुकूमत की नाकामी का उंधिया दें, बल्कि हम ये कहें कि इन हालात से निपटने के लिए भी बेहतर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। परसों ये वाकया हुआ है और इसके बाद से लेकर अब तक अगर हम गौर करें तो तमाम के तमाम तर लोग जो हैं, चाहे वो मुल्क की अस्करी क़यादत हो, चाहे वो मुल्क की सियासी क़यादत हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, उन तमाम लोग ने सर जोड़कर बैठे हुए हैं कल से लेकर आज तक। मैं समझता हूँ मुख्तलिफ मीटिंगें हुई हैं जो गवर्नर हाउस में हुई हैं, कोर कमांडर के दफ्तर में हुई हैं, और फिर गवर्नर हाउस में अपेक्स कमेटी की मीटिंग जारी है। तो इन तमाम मीटिंग्स में जाहिर है कोई ना कोई नतीजा निकाला जाएगा, कोई ना कोई जो है वो इस बात को स्ट्रेस किया जाएगा कि सिक्योरिटी को मजीद कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, और जरूर इस बात को भी जो है वो नजरों में लिया जाएगा कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको कैसे निशाना बनने से रोका जाए और इन दहशतगर्दों को नाकाम बनाया जाए। एक सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, एक फर्म डिसीजन जो पहले भी था और उसको दोबारा मैं समझता हूँ स्ट्रेस किया गया है, वो ये किया गया है कि जो इन दहशत गर्दों के ओरिजिनेशन है कराची के अंदर, जो एक सपोर्ट है कराची के अंदर, हम हमेशा इस बात को बिलीव करते हैं कि कोई भी काम लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता, तो उस लोकल सपोर्ट के नेटवर्क को तोड़ने के लिए चाहे उसमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, वो उस लोकल सपोर्ट को जो है वो इंशाल्लाह ब्रेक किया जाएगा, और कराची शहर में इस किस्म के हादसा और वाकयात की रोकथाम के लिए मजीद बेहतर इकदाम किए जाएंगे।
चिनोई साहब, आप हमारे साथ रहें, बहुत अच्छा है कि आपने जो बात की। मैं चाहती हूं कि हमारे साथ जो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं आजिज़ जमाली, इस बात को आगे बढ़ाएं। आजिज़ जमाली, आपको खुशामदीद।
जी शुक्रिया।
तो जिस तरह से कहा जा रहा है और कि वहाँ जो कराची में जो हमला हुआ ये लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता था, जाहिर है वहाँ पर ऐसे हैं टीटीपी के सेल्स, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सेल्स जो कि इमदाद कर रहे थे इन दहशत गर्दों की। हमने जो आखिरी इतलात आने तक ये सुना था कि सफूरा गोठ जो है वो एक दहशत गर्दों का मरकज़ बना हुआ था और गालिबन वहाँ से उज़्बेक्स भी गए थे जब एयरपोर्ट पे हमला हुआ था। आपकी क्या इतलात हैं इस सिलसिले में?
जी देखें, अभी तक ऐसी कोई तस्दीक नहीं कही जा सकती कि इस वाक्य में टीटीपी मुलविस है या और ग्रुप्स मुलविस हैं। कौन लोकल ग्रुप्स हैं जो इसमें शामिल हैं, या ये कार्रवाई कोई इंटरनेशनल है या सिर्फ लोकल ग्रुप्स की कार्रवाई है, ये तीन अलग अलग रुख हैं जिसपे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो बताया जा रहा है, एक तो ये रुख है कि लोकल कौन है, दूसरा ये रुख है कि आया दाइश है या तालिबान है, और तीसरी इस बात पे भी एक किस्म की तफ्तीश या तहकीक हो रही है कि इस किस्म के वाकयात का पसे पर्दा नतायज क्या निकालने थे, क्या कोई इसमें कोई आलमी कुवत मुलविस है या लोकल मसाइल हैं। बहस बड़ी तवील है लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है, और इसमें इस बात को कभी भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि इस किस्म के वाकयात जब भी होते हैं तो फिर इसके मुख्तलफ पहलू होते हैं जिन पहलुओं पर तफ्तीश होती है। मैं आपको ये बताऊं कि इसमें अहम बात जो है कि ये एक पंफलेट मिला है जिससे ये इशारा दिया गया कि दाइश ने जो है ये कार्रवाई की है, लेकिन सिर्फ पंफलेट के बुनियाद पे ये फैसला नहीं किया जा सकता। अभी थोड़ी देर कबल जब बात हो रही थी मैं सुन रहा था कि ये सिर्फ पहला वाकया नहीं है, ये जरूर है कि इस कराची ऑपरेशन के दौरान क्राइम रेशो कम जरूर हुआ होगा, भत्तागिरी जरूर कम हुई होगी, लेकिन इससे पहले भी बड़े बड़े वाकयात हुए हैं। सबीन महमूद का कत्ल हुआ, सभी गुज़श्ता एक हफ्ते साहब पहले यहाँ के यूनिवर्सिटी के एक जो जर्नलिस्ट थे, राइटर थे, यासिर रिजवी, उनका कत्ल हुआ है, मुख्तलफ उलमा कत्ल हुए हैं, पुलिस अफसरान मुसलसल तवातिर जब से कराची ऑपरेशन जारी है आज तक पुलिस अफसरान कत्ल हो रहे हैं। डीएसपी को कत्ल किया गया था दो हफ्ते पहले तकरीबन, इसी जिस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे, एक एसएसपी मलीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि राह मुलविस है, जब कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनका एक सियासी पार्टी से ताल्लुक था और उनके लिए कहा गया था कि इनका राह से ताल्लुक है, और उन मुलजिमान ने खुद इस बात का इकरार किया था बकौल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, तो उसके दूसरे दिन वो पुलिस अफसर कत्ल होता है जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। तो ये एक वाकया नहीं है, कराची में वाकयात के अलग अलग रुख हैं, लेकिन इस कराची ऑपरेशन के दौरान वाकयात का सिलसिला जारी रहा जो अभी तक कल तक ये जो अंदोनाक वाकया हुआ है बर्बरियत है बहुत, और लेकिन जिस तरह के क्लूज मिले हैं, जिस तरह की निशानदेही हुई है, जिस तरह के जो जख्मियों के बयान सामने आए हैं, तो उसमें ज्यादा तासुर ये मिल रहा है कि ये लोकल लोग हैं। मोटरसाइकिल्स पे कार्रवाई इससे पहले कभी तालिबान और दाइश जैसी तंजीमों की नजर नहीं आती कि मोटरसाइकिलों पे सवार होके और उन्हीं फिर गलियों में वो लोग गायब हो गए हों। तो कराची में इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे हैं, पहले भी इस तरह के ऑपरेशन होते रहे हैं, तो इसलिए ये अभी नहीं कहा जा सकता कि ये टीटीपी है, ये दाएश है या कोई लोकल ग्रुप है।
अच्छा जी चिनोय साहब, यहाँ अमेरिका में जब भी इस तरह के हमले होते हैं तो उनको कहते हैं सिग्नेचर अटैक्स, यानी कि कोई इस तरह का एक पैटर्न नजर आता है। हमने भी देखा कि ये जो बस में घुस के फायर करने का जो सिलसिला था, इस तरह का पैटर्न हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा है, जहां आप भी जानते हैं कि सेक्टेरियन बुनियादों पे हमले होते रहे हैं। आपकी का अपना अंदाजा क्या है कि कोई पैटर्न नजर आया, कोई इशारा मिला कि कौन हो सकते हैं ये लोग?
देखिए, दो बातें इस पे अहम हैं। एक तरफ तो क्रिमिनल अपने सिग्नेचर बड़ी मुश्किल से छोड़ता है, जो पॉम्पलेट वगैरह छोड़ने की जब हम बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि ये सिग्नेचर छोड़े गए हों। दूसरा तरीका है वारदात, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि तरीका है वारदात से जो है वो सिग्नेचर ज़्यादा जाहिर होती है, और इस सिग्नेचर से हम बहुत सारे मतलब भी अखज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त कबल इस वक्त कुछ नहीं कहूँगा, मुख्तलिफ एंगल्स हैं जिससे तफ्तीश हो रही है, उसमें बैरूनी हाथ मुलवस होने की बात हो रही है, उसमें रॉ के मुलवस होने की बात हो रही है, उसमें दाइश जैसी तंजीमों के मुलवस होने की बात हो रही है, और उसमें दूसरे अवामिल भी शामिल हैं। तफ्तीश जब भी होती है वो तमाम एंगल से की जाती है, तमाम सिग्नेचर्स देखे जाते हैं, तमाम मुमकिन वाकयात मुशाहदात लोकल एविडेंसेस फॉरेंसिक एविडेंसेस और इन तमाम टेक्निकल चीज़ों को जो है वो मद्देनजर लाया जाता है, और उसके बाद ही हम किसी हतमी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। अभी इस वक्त जो कुछ भी हम कहेंगे मैं समझता हूँ कबल इस वक्त हो जाएगा, लेकिन जो शवाहदात मिले हैं उन पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई नतीजा जो है सही डायरेक्शन में ज़रूर अखज़ कर लिया जाएगा।
अच्छा, और चिनोय साहब जाने से पहले अगर आप इस पर तबसरा करें कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तआवुन करने के लिए तैयार है, और अगर कोई खुफिया मालूमात के तबादले की बात हो तो अमरीका इस सिलसिले में पूरा तआवुन करेगा, इस हवाले से बताइए कि पाकिस्तान उसके लिए तैयार है?
देखिए, मैं समझता हूँ ये एक डिप्लोमेटिक लेवल का मामला है, ये एक सरकारी मामला है, और इसमें हमारी अस्करी क्यादत जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पर रद्दअमल कर सकती है। हमारा इस पर रद्दअमल देना भी मैं समझता हूँ नहीं बनता, और ये मामला हम अपनी अस्करी क्यादत और हमारी जो डिप्लोमेटिक लेवल है उस पर छोड़ दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा।
अच्छा, बहुत शुक्रिया, इस मोड़ पर हम खुदा हाफिज़ कहते हैं CPLC के सरबराह अहमद चिनोय को। हमें बाज़ लोगों ने कॉल भी किया है, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ कॉलर्स को भी लेंगे, और आजिज़ जमाली आप हमारे साथ रहें क्योंकि हम चाहेंगे कि अगले मौजू पर भी आप कुछ बात करें। इस वक्त एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि इस वक्त भारत की जो खुफिया انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے اندر گڑبڑ پھیلا رہی ہیں. ہمارے ساتھ پچھلے سیگمنٹ سے ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عاجز جمالی, جبکہ عنقریب ہوں گے ہمارے ساتھ جرمنی میں پاکستان کے سابق سفیر آصف ایزدی. لیکن کیونکہ ہم نے آپ لوگوں سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ آپ مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں, لہٰذا اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ایک کالر لائن پر ہیں. ہمیں کال کیا ہے دھانا والا سے شوکت علی انجم نے. جی جناب شوکت علی انجم, بات کیجیے. جی ہم
پر زور طور پر مذمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. میں یہ میرے خیال میں یہ اس میں جو ہاتھ ہے لوکل آدمیوں کے ساتھ ساتھ رہا اور ایم کے ایم کے کچھ لوگوں کا بھی ہاتھ لگتا ہے, کیونکہ سورت مرزا کو بھی اسی دن پھانسی دی گئی تھی اور اس کے بعد اسی دن یہ تقریباً قتل کا لوگوں کو شہید کرنے کا واقعہ ہوا. تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ ملکی لوگوں سے امن کریں اور تاکہ ملک میں استحکام پیدا ہو. تھینک یو سو کائنڈ آف یو میڈم.
جی آپ تو جانتے ہیں کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں, ہم تو جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے, لہٰذا ہم اپنے جو ماہرین ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی بھی رائے ہم سنتے ہیں. اس وقت ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ عاجز جمالی ہیں لائن پر. عاجز جمالی, آپ کراچی کی صورتحال کے بارے میں بتائیے کیونکہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ آج کیا رہا وہاں. ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو کل ہلاک کیا گیا تھا ان کی تدفین ہوئی ہے. جی
جی ہاں بالکل, آج 45 لوگوں کے جنازے اٹھے یہاں پہ اور جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا گزشتہ روز تو وہاں سے جنازے اٹھے اور وہاں نماز جنازہ ہوئی, اس کے بعد ان کی سخی حسن قبرستان میں تدفین ہوئی ہے. اس واقعے نے پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بڑے امپیکٹ چھوڑے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کو یہاں پر آنا تھا دورے پہ, تو آج یہ اعلان ہوا ہے کہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم نے جو ہے وہ پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس واقعے کا آپ ریفلیکشن دیکھ سکتی ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی اس کے ریفلیکشن ہوئے ہیں. یہاں پہ گوادر بندرگاہ اور چائنا سے ہونے والے معاہدوں پہ بھی آج کل اس واقعے کے بعد زور و شور سے بحث جاری ہے. جو گوادر کاشگر راہداری کی بات ہو رہی ہے اور اس تناظر میں لوگ یہاں راہ کی بات کرتے ہیں جو بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. راہ کے حوالے سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں, اور ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو راہ کو ضرور اس میں ایک اندازے سے ایک خیال سے تصور کیا جاتا ہے یا پھر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. یقیناً ہوں گے وہ تو فارن آفس سطح پہ جو بھی معاملات ہوں گے یا پاکستان کی آرمی اسپیشلی اس واقعے پہ بڑا کنسرن ہے. آج کراچی میں ایک ایس پی آر جو انٹر سروسز پبلک ریلیشن ہے اس نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا جو آج اجلاس ہوئے تھے اپیکس کمیٹی کے, اس حوالے سے کہ اس معاملے پہ یقیناً غور کیا گیا ہے. جو راہ کے کلوز ہیں جس میں سمندری حدود کے حوالے سے بھی ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بارڈرز ہیں بارڈرز پہ بھی سیکیورٹی سخت کرنے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن اب تک کل کے واقعے سے لے کے اب تک اور مقامی سطح پہ یہاں پہ چھاپے بھی لگے ہیں, کل بھی رینجرز نے کاروائیاں کی ہیں اور آج ابھی سے کوئی دو گھنٹے پہلے سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے ایک دفتر پہ چھاپا لگا ہے جہاں ان کے یونٹ انچارج سمیت کوئی 15 لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے تانے بانے یقیناً اس اندوناک واقعے سے ہی ملتے ہیں جو کل یہاں پر رونما ہوا, جس میں دو مزید لوگ آج جانبرک بھی ہو چکے ہیں. تو اس طرح 47 افراد جو کل 43-44 تھے, آج 47 تک یہ تعداد پہنچ گئی ہے. مزید زخمی بھی ابھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں.
جی جی
اس واقعے کے مختلف ریفلیکشنز ہیں جو سیاسی بھی ہیں اور جرائم سے بھی ہیں.
جی آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق سفیر جو جرمنی میں سفیر رہ چکے ہیں آصف ایزدی لائن پر ہیں. آصف ازدی صاحب آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو یہ بتائیے کہ آج پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ غیر ملکی ہاتھ رو ملک میں پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. ہم نے اس طرح کے بیانات پہلے بھی سنے ہیں اور ذرا سا غیر معمولی نظر آتا ہے کہ اتنے فریکوینٹلی یہ بیانات دیے جائیں. آپ کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کل کا واقعہ ہوا اسماعیلیز کو جو ہلاک کیا گیا بس میں, کیا اس وقت اشارہ رو کی طرف کیا جا رہا ہے؟
آپ نے جیسے بتایا نا کہ ہمارے فورن سیکرٹری نے آج میڈیا کو بریفنگ کی ہے جس میں انہوں نے رو کا ذکر کیا ہے. اصل میں یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے, کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسی رو ہے پاکستان میں وہ انسٹیبلٹی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے, پاکستان میں وہ آزادی پسندگی کو ہوا دے رہی ہے. تو سب دنیا کو پتا ہے یہ, اور ہمارے فورن سیکرٹری نے تو آج بڑا ایک دبے الفاظ میں یہ بات کہی ہے. اس سے پہلے جو کو کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی مہینے کے شروع میں, انہوں نے صاف صاف کہا کہ رو کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہاں بڑھ رہی ہیں اور اس کا ہم سدے بات کریں گے. اور اس سے پہلے آپ چیف نے یہی کہا تھا. تو یہ تو ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے ان کا جو مشن ہے, اس مشن میں سر فہرست یہی چیز ہے کہ پاکستان میں پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے اور پاکستان میں علیحدگی پسندگی کو ہوا دی جائے. تو میں اس پہ حیران نہیں ہوں کہ یہ وہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہر ملک میں ایک جو ان کی ہوتی ہے سیکرٹ ایجنسی ہوتی ہے, اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو کام حکومت بربرا نہیں کر سکتی ہے وہ خفیہ طریقے سے اپنی سیکرٹ ایجنسی سے کراتی ہے. تو رو تو پچھلے 30-35 سال سے بھی زیادہ سالوں سے پاکستان میں ایکٹیو ہے اور پوری کوشش کر رہی ہے, اور اس وقت میرے خیال میں جو ان کے لیے سب سے بڑی تشویش کا, ہندوستان کی تشویش کا معاملہ ہے وہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. تو اگر یہ کوریڈور بن جائے گی اور یقین بنے گی, مجھے کافی اس کا یقین ہے, تو اس سے ہندوستان کی جو ایک اس علاقے میں یا اس خطے میں ان کی جو ایمبیشنز ہیں ان کو بہت سخت دھچکا پہنچے گا. تو اس لیے ہندوستان کے لیے پاکستان میں سبورشن کو ایکسپورٹ کرنا, ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرنا جو کر رہے ہیں اس کو مزید تیز کرنا, کسی کو اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو ہے وہ بلوچستان میں کریں گے سب سے زیادہ, کراچی میں کر رہے ہیں, فاتح کے علاقے میں بھی کبھی کبھی کیا انہوں نے, اور سوال بن گئے گلگت بلتستان کے علاقے میں بھی شروع کر دیں گے. ان کا اس وقت اولین جو ہے نا ترجیحات میں پاکستان کو ری اسٹیبلائز کرنا ہے, اور خصوصاً موجودہ حالات میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو سبورٹ کرنے کی یا اس کو اس میں مشکلات ڈالنے کی کوشش ہے.
ایزی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ ہم بھارت سے بھی ایک تجزیہ کار کو لیتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کے جواب میں وہ کچھ کہیں. ہم ان کو اسکائپ پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس وقت ہم اپنے تجزیہ کار کراچی عاجز جمالی کی طرف جاتے ہیں. عاجز جمالی, آپ کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں نے یہ فائرنگ کی بس کے اندر اردو بول رہے تھے, اور ماضی میں ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اگر تانے بانے جوڑے جائیں تو عموماً فاٹا اور خیبر پختونخوا کی طرف جوڑے جاتے ہیں. اس وقت آپ بتائیے کہ پاکستان میں اور سندھ میں اور کس طرح کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, کن لائنوں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟
جی, یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ تھا نسبتاً جو ٹی ٹی پی, داعش یا کالعدم تنظیموں کی جو دیگر کاروائیاں ہوتی ہیں اس سے یہ ہٹ کے ایک کاروائی تھی. چونکہ عام طور پہ یہاں پہ یا تو بم دھماکے ہوتے ہیں یا خود کش دھماکے ہوتے ہیں یا گاڑی میں بارود ہوتا ہے جس کو ہٹ کیا جاتا ہے, یہ ایسے نہیں تھا. یہ واقعہ اس طرح نوعیت کا, ایک تو شہر کے مین سڑک پہ ہوا ہے, اور اس کے بعد دوسری بات اس میں یہ اہم تھی کہ موٹر سائیکلوں پہ ایسے نوجوان جن کو پہنتے شرٹس پہنی ہوئی تھی, جن کے حلیے شہری نوجوانوں کی طرح کے تھے, جو زخمیوں کے بیانات ہیں ان کے مطابق, اور پھر وہ سوار ہوئے ہیں بس پہ, بس کو روکا ہے, پھر اندر ان فائرنگ کی ہے, اور وہ اردو میں انہوں نے لوگوں کو کہا کہ قتل کر دو, مار دو, تو اس وقت فائرنگ شروع ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ واقعہ عام واقعات سے تھوڑا سا منفرد ہے. تو اس وجہ سے سوال اٹھتے ہیں अच्छा, उसके बाद फिर जो गिरफ्तारियां हुई हैं कल से लेके अब तक, मुख्तलिफ औकात में रेंजर्स ने गिरफ्तारियां की हैं और कराची की पुलिस ने भी की हैं, तो उनमें सियासी गिरफ्तारियां भी शामिल हैं, सियासी जमातों के कारकुन भी शामिल हैं, तो यकीनन उसके आने बाने लोग उससे मिलाते हैं। सोशल मीडिया पे ये एक बहस चल रही है, लोग सोलत मिर्जा के फांसी की बात भी करते हैं, लोग रेंजर्स की नाकामी की बात भी करते हैं, लोग कुछ दिन पहले जो जिस एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राह के मुलविस होने की, जिसको हटाया गया था और आज फिर दोबारा उसको बहाल भी कर दिया गया है, उसी पुलिस अफसर को जिसने एक सियासी जमात एमक्यूएम पर ये इल्जाम लगाया था कि उसके राह से ताल्लुकात हैं, उन्हीं इल्जाम पे उनको हटाया गया था और फिर उनको बहाल भी कर दिया गया है। तो ये सवाल सारे जो लोकल लोग हैं सूबा सिंध में या पाकिस्तान में या कराची के लोग ये सवाल जरूर कर रहे हैं, और लोग दाएश और टीटीपी की बात कम कर रहे हैं, यहाँ के लोग जो लोकल टेररिस्ट ग्रुप हैं या लोकल जो अस्करियत पसंद ग्रुप्स हैं उनकी बात ज्यादा कर रहे हैं। इवन जो आला सतही इजलास हुआ है जिसमें सिक्योरिटी इदारों, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस और दीगर अहम इदारों के लोग शामिल थे, उसमें भी इन चीजों पे बात की गई है, और इन इजलास के बाद भी अभी तक कराची शहर में मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो ये सारे ताने बाने लोग मिला के इस पस मंजर में बात करते हैं।
आसिफ एजदी साहब, आप भी जानते हैं कि अगर गैर मुल्की एजेंसियां भी हैं तो भी मकामी ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए इस तरह के कत्ल करने के लिए तैयार हैं, लिहाजा कहीं भी इन्वेस्टिगेशन जा सकती है। लेकिन आपसे जो अगला सवाल है, आप भी जानते हैं कि जनरल राहील शरीफ पिछले दिनों अफगानिस्तान तशरीफ ले गए थे, क्या इस वक्त कोई शवाहिद मिले हैं कि अफगानिस्तान के अंदर रॉ ने काम करना शुरू कर दिया है? जी आसिफ एजदी साहब, इस वक्त हमारे
खास तौर पे जब से ये 2001 में अमेरिका ने तालिबान को निकाला तो उसके बाद तो रॉ को अफगानिस्तान में खुली छुट्टी दी हुई है, मिल गई थी, तो मुझे तो उम्मीद है कि जो अब हुकूमत आई है अशरफ गनी की, वो रॉ की एक्टिविटीज पर कुछ ना कुछ वो पाबंदियां लगाएगी। लेकिन पिछले कोई 14-15 साल से अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में टेररिज्म और सबवर्शन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है और उनको इसमें पूरी आजादी थी।
अच्छा जी, इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ मनीष कुमार लाइन पर आए, बल्कि बताया जा रहा है कि वो कनेक्ट हो गए हैं और अनकरीब उनको हम स्काइप पे सुनेंगे। एसडी साहब चंद मिनट और रहें हमारे साथ, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेररिज्म के हवाले से, लिहाजा आजिज़ जमाली आप बताइए कि दाऊद इब्राहिम के बारे में जो सवालात उठाए गए थे भारत की तरफ से, क्या नज़र आता है और क्या शवाहिद मिलते हैं कि दाऊद इब्राहिम, जो कि जैसे कि आप जानते हैं भारतीय नेशनल हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं?
जी ये जैसे अभी राह की बात हो रही थी तो इसी तरह दाऊद इब्राहिम की बातें भी मुख्तलिफ औकात में यहाँ उठती हैं, खास तौर पे इस शहर कराची में जहाँ ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती हब है, यहाँ पे ये सवाल जरूर उठते हैं, और ये सवाल भी उठते हैं कि दाऊद इब्राहिम के यहाँ पर लोगों से ताल्लुकात भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, ये सवाल भी यहाँ पे उठते हैं। ये तो हतमी तौर पे कोई भी नहीं कह सकता कि दाऊद इब्राहिम इस वक्त कहाँ पर है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरा ख्याल है यहाँ की एजेंसीज को भी नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर सिर्फ भारत से इल्जाम की हद तक नहीं, लेकिन ये सवाल पाकिस्तान में भी उठता है कि आखिर दाऊद इब्राहिम का जो ज्यादा यहाँ पे ताल्लुकात हैं हर तरह के, उसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, उसके पीछे क्या कोई सियासी मफादात हैं, तिजारती मफादात हैं, या यहाँ पर और लोग जो खुफिया काम कर रहे हैं उनसे कोई ताल्लुकात है, ये सवाल यहाँ सियासी हलकों में जरूर बहस तलब होते हैं, बहस जरूर होती है, यहाँ के मीडिया पे भी ये बातें जरूर उठती हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि दाऊद इब्राहिम इस वक्त कहाँ पर हैं। लेकिन ना सिर्फ दाऊद इब्राहिम लेकिन भारत से आने वाले दीगर लोगों के बारे में भी इस तरह के सवाल यहाँ पे जरूर उठते हैं, और ये सवाल पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं वही उठाती हैं। इसी तनाजुर में हम जब राह की बात करते हैं तो इन सारी बातों पर लोग इस इस पस मंजर को देखते हैं, ये बातें करते हैं। लेकिन जब राह की बात हो, तो अभी अफगानिस्तान की जब आप बात कर रही थी, तो इस जो जनरल राहिल शरीफ की मुलाकात थी या जो दौरा था अफगानिस्तान का, उसमें ये अहम बात जो थी वो यही थी कि अभी राह का जो पाकिस्तान में मुदाखलत है, खासतौर पर यहाँ इनको, यहाँ की हुकूमत को एतराज है कि बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान जैसे अभी पाक चाइना इकोनॉमिक राहदारी की बात हो रही थी कि बलूचिस्तान में ही राह की ज्यादा मुदाखलत और अफगानिस्तान की ज्यादा मुदाखलत की बातें होती हैं। तो यकीनन इस मुलाकात के बाद उसके नतायज क्या निकलते हैं उसका तो अब तक कोई अंदाजा नहीं, कोई रिजल्ट तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये इसी तनाजुर में सारी बातें हो रही हैं।
एसडी साहब, हमारे पास एक दो मिनट हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे आप भी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों कोशिश कर रहे हैं कि उनका अफगानिस्तान में असर व रसूख बढ़े। आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक एक बुनियाद बना है दोनों ममालिक के लिए कि वो एक दूसरे के खिलाफ जो हैं एजेंसीज के चार्जेस लगाएं? जी एसडी साहब, शायद उनका अच्छा उनका शायद कनेक्शन हमारे साथ डिस्टर्ब हो गया है। मनीष कुमार हमारे साथ हैं इस वक्त? अच्छा, मनीष कुमार भी हमारे साथ नहीं हैं, और हम अनकरीब इस सेगमेंट को ख़त्म करेंगे। आजिज जमाली, आप हमारे साथ रहें, क्योंकि इस सेगमेंट को इस वक्त हम ख़त्म करते हैं, हमें अगले मौजू की तरफ जाना है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं कि कैंप डेविड का जो मामला है वो आज इख्तिताम पजीर हो रहा है अमरीका में, और इस हवाले से हमारे साथ होंगे सियासियात के प्रोफेसर फैज़ानुल हक, जो कि स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आजिज जमाली, आप चंद मिनट और रहें हमारे साथ, इस वक्त एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं।
What's up, पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up, पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और जैसे कि आप लोग जानते हैं हम कई मौजूआत को कवर करते हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आ रहे हैं। इस वक्त मौजू ये है कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ कैंप डेविड के हवाले से दो रोज़ का इजलास हुआ, और आज उसका अख्तितामी इजलास है जिसमें कई जीसीसी के ममालिक शरीक हैं, और वो उनके नुमाइंदे सदर ओबामा से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोफेसर फैज़ान हक हमें ज्वाइन करें, जो ही वो आते हैं तो हम आपको उनके साथ मिलाते हैं। लेकिन जो असल मौजू है जिसकी तरफ हम आएंगे वो ये है कि सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और यूएई ने फकत चंद अपने नुमाइंदों को इस मीटिंग में भेजा है। इस सिलसिले में अभी हम खुशामदीद कहते हैं प्रोफेसर फैज़ान हक को, जो पढ़ाते हैं और सियासियात के प्रोफेसर हैं बफेलो स्टेट यूनिवर्सिटी में। जी प्रोफेसर फैज़ान, आपको खुशामदीद।
जी खुशामदीद, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। बुनियादी तौर पे आपसे यही सवाल कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो जीसीसी के ममालिक हैं उनसे तवक्को की जा रही थी कि वो कोई सीनियर लेवल के लोगों को भेजेंगे कैंप डेविड के मुज़ाकरात के लिए, लेकिन बहरीन, ओमान, यूएई और सऊदी अरब के जो हैं वहाँ से जो जो लोग आए हैं वो सीनियर लेवल के लोग नहीं हैं। आपके ख्याल में इसकी वजह से सदर ओबामा की जो बातचीत होने वाली थी उन लोगों के साथ वो किस हद तक मुतासर होगी?
जी, सबसे पहले तमाम बहन भाइयों को बहुत सलाम दुआ और प्यार, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे। असल में हम ये तो नहीं कह सकते कि जो लोग आए हैं वो सीनियर नहीं हैं या उनका कोई मुकाम नहीं है अपनी अपनी हुकूमतों में, क्योंकि ये जीसीसी की अगर तमाम جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں اگر وہ آ جاتے تو ان کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہیڈ آف اسٹیٹس کے آنے کی وجہ سے کہ ان کا جو جی سی سی کے ممالک ہیں وہ کیسا لگتا کہ امریکہ کے کہنے پر تمام لوگ پہنچ گئے. تو یہ تھوڑی سی فیس سیونگ بھی ہے ان کی طرف سے. بہرحال یہ ایک اس طرح سے کامیاب کانفرنس ہے کہ اس میں سیکنڈ ان کمانڈ جو ہیں وہ اکثر موجود ہیں لوگ, اور عام طور پہ خاص کر جو سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں جو کنگ ہیں ہی وہ نہیں چاہتے ایسی جگہوں پر وہ, جبکہ وہ خود ہوسٹ کریں تو اور بات ہے. تو اس طرح سے وہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ امریکہ کے کہنے پر ہم بھاگے دوڑے نہیں گئے. لیکن یہ کہ یہ ایک بہت اہم کانفرنس ہے کہ اس کانفرنس کی وجہ سے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ امریکہ کیا اپنا بیلنس قائم رکھ سکے گا مشرق وسطی میں ایران ورسز بمقابلہ سعودی عرب یا جی سی سی یا نہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے پاس کچھ ایسی ان کے پاس ایڈوانٹیجز ہیں اور وہ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ وہ امریکہ کے لیے اور یورپین پاورز کے لیے زیادہ فیوریبل ہو سکتے ہیں. اور یہ بات جو ہے خاص کر جو جی سی سی کے ممالک ہیں ان کے لیے مشکل بات ہے, کیونکہ اتنے عرصے سے وہی اہمیت کے حامل رہے ہیں اور وہی مرکز رہے ہیں توجہ کا یورپ کی عالمی برادری کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. اور امید ہے کہ ان کی وجہ سے ایک وہ بیلنس اور توازن جو ہے وہ قائم کرنے میں آسانی ہوگی.
یہ بتائیے کہ ابھی سب سے بڑا آپ بھی جانتے ہیں مسئلہ ہے وہ ایران جوہری معاہدے کا. یہ معاہدہ جو ہے وہ کس حد تک ان ممالک یعنی جی سی سی ممالک اور امریکہ کے درمیان بات چیت جو ہو رہی ہے اس کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟
دیکھیے اس وقت جو معاہدہ ہے ہمیں معلوم ہے اس معاہدے کی جو کہ اس میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ایران کسی قسم کی غلطی کرتا ہے یا اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو جیسے کہ وہ لینگویج جو کہ زبان اس میں لکھی گئی ہے معاہدے میں, اس میں کہا گیا ہے کہ یہ سنیپ بیک ہو جائے گی, وہ تمام سینکشنز جس سے ایران نکلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ واپس اپنی جگہ پر چلی جائیں گی. اور امریکہ کو اس بات کا بھی ڈر اور خوف ہے, بلکہ نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ کو بھی ان کا یہ کنسرن ہے کہ اگر ایران ایٹمی توانائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا اتنا عبور حاصل کر لیتا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنا سکے تو اس کی وجہ سے سعودی عرب بھی اور جی سی سی کے لوگ بھی وہاں کے ممالک جن کے پاس وسائل موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تکنیکی لحاظ سے وہ ایسے مقام پر ابھی نہیں پہنچ سکے مگر وہاں پر کیونکہ ان کے پاس وسائل موجود ہیں وہ ایسے مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں وہ اس ایٹمی جو دوڑ ہے اس میں شامل ہو جائیں اور اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی پولرائزیشن شروع ہو جائے مشرق وسطی میں جس کا حل سوائے میوچول ڈسٹرکشن کے کچھ نہ ہو. اور یہ بات جو ہے بہت بڑا کنسرن ہے یورپ کا بھی اور امریکہ بھی کا بھی. اور یہ جو کانفرنس بلائی گئی ہے یہ ایک انتہائی نازک وقت پہ بلائی گئی ہے کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے آخری دو سالوں میں بہت سے ایسے مسائل کی طرف توجہ دی ہے جو عام طور پہ جو دوسرے صدور ہیں یا ان کا جو دور ہے اس میں وہ توجہ انہوں نے نہیں دی تھی. اور اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ چاہتے ہیں کہ جو لیگسی انہوں نے چھوڑی ہے امن کی مشرق وسطی میں بھی اور ایران میں ایران کے ساتھ بھی, اور اس کا جو توازن ہے اس کے مفاد جو اس کے جو مفادات ہیں وہ خاص کر امریکہ کو یورپ کو پہنچے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے پاس بھی اس کا وہ بھی اس کو سپورٹ کریں. کیونکہ اگر وہ سپورٹ نہیں کرتے تو یہ معاہدہ یا یہ جو امریکہ نے رسک لیا ہے وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گا.
جی, اور آپ جانتے ہیں اسرائیل کو بھی بہت تشویش ہے اس ایران جوہری معاہدے کے حوالے سے, لیکن آج ایک اور تشویش ان کو ہو گئی کیونکہ ویٹیکن نے کہا ہے کہ وہ فلسطین کو تسلیم کرتا ہے بطور ایک ریاست کے. آپ کے خیال میں ویٹیکن کے اس فیصلے سے کیا اثرات پڑیں گے مشرق وسطی میں؟
دیکھیے اس سے یہ ایک جہاں تک فلسطین کے لوگ ہیں جہاں تک مسلم ممالک ہیں یہ ایک بڑی خوشائند قدم ہے क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले ही दिनों वेटिकन ने मुस्लिम या इस्लामिक जो रेडिकलाइजेशन है, जो दहशत पसंदी और दहशत पसंद जो तंजीमें हैं उनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन उन्होंने ये कदम उठा के एक ऐसी बात की है कि आप समझिए कि एक सिलसिला चल निकला है, और मेरे ख्याल में कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि कुछ और जो मगरबी ममालिक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाएंगे और फलस्तीन की रियासत को कबूल कर लेंगे। ये एक जिसको कहते हैं कि होनी शुदनी वाली बात है, और ये इसराइल भी इस बात को समझता है, सारी दुनिया समझती है कि ऐसा मौका आएगा और आ रहा है, क्योंकि दुनिया जो है एक तो बहुत छोटी हो चुकी है, और उसके साथ जैसे हमने देखा कि जब जब भी कोई उबाल उठा है गाजा में या वेस्ट बैंक में फलस्तीनी इलाकों में, तो उनकी तस्वीर उनकी वीडियोस हर जगह जारी हुई, तो इसराइल के पास अब वो कंट्रोल नहीं रहा जो पहले था, और ये और बल्कि इसराइल के अंदर ऐसी आवाजें उठ रही हैं जिसमें वो ये समझते हैं कि फलस्तीन जो है फलस्तीनी जो है उनको उनके हकूक दिए जाएं, क्योंकि पायदार अमन का और कोई रास्ता नहीं है। इसराइल जितनी भी फौजी तैयारी कर ले, जितने भी लोग उसकी मदद कर लें, जब तक वो अमन नहीं होगा वो मुल्क जो है वो एक एहसास जंग में मुब्तला रहेगा, और एहसास जंग में मुब्तला रहना जो है किसी भी मुल्क के लिए चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो खासे अरसे तक मुमकिन नहीं है, और ये खुद पाकिस्तान में एक्सपीरियंस कर चुके हैं।
प्रोफेसर फैजान, हमारे पास सिर्फ एक डेढ़ मिनट है, लेकिन आप ये बताएं, आप भी जानते हैं कि ईरान पे से अगर पाबंदियां हट गईं तो जाहिर है उसमें एक नई ताकत आ जाएगी। आप क्या समझते हैं कि मशरक़ वस्ता में इस वक्त जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, उसको दोबारा से इस्तवार करने के लिए ये एक अहम कदम होगा?
जी, मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा कदम है, और उसमें सऊदी अरब के जो भी कंसर्न्स हैं वो भी अपनी जगह वैलिड हैं, लेकिन तीन चीज़ें मेरे जहन में आती हैं जो मैं चाहूँगा शेयर करूँ क्विकली। एक तो ये है कि ईरान की जो नई पौध है, जो नई नस्ल है, वो मगरब के साथ और ख़ासकर अमेरिका के साथ एक अच्छे ताल्लुकात चाहती है, क्योंकि वो समझते हैं कि आज़ादी के इजहार का ये एक अच्छा रास्ता है कि मगरब और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएँ, और ईरान को के जो के आयतुल्लाज की जो हुकूमत है उनके खिलाफ या कम से कम उसके लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत पैदा होगी। नंबर दो बात यह है कि ये सऊदी अरब और जो जीसीसी के खलीजी ममालिक हैं, इनको इनको ऐसी पोजीशन पे लाया जा सकता है और वो जाएंगे जिसमें उनको खुद अपने रिफॉर्म करने पड़ेंगे अपनी हुकूमतों में, लोगों को अच्छी जरूरियात सहूलियात देनी पड़ेंगी, और उनको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत की तरफ उनको कदम उठाने पड़ेंगे और कुछ आज़ादियां देनी पड़ेंगी। और तीसरी जो बात है वो ये है कि जो ऐसा कंपटीशन होता है इन्फ्लुएंसेस का, सियासी असर का, असर व रसूख का, चाहे वो सऊदी अरब और ईरान का हो, चाहे वो अमेरिका और रूस का हो, जब ऐसा होता है तो इससे बहुत से ऐसे लोगों का भला हो जाता है या ममालिक का जो कि इस कंपटीशन का फायदा उठाकर कम अज कम आगे बढ़ सकते हैं, या ये कि उससे उससे फायदा उठा सकते हैं, जिसमें छोटे ममालिक आ जाते हैं फिलीपींस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्योंकि दोनों तरफ के लोग को, दोनों तरफ की हुकूमतें ये चाहेंगी कि उनके दोस्तों में इजाफा हो, उनके दुश्मनों में कमी हो, और वो एक अच्छा और खैर सगाली का मैसेज भेज सकें, और इसमें ईरान जो है बहुत एग्रेसिवली काम करेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा देर तक आइसोलेटेड रहा है।
अच्छा,
तो मेरे ख्याल में ये इसके तीन मुस्बत पहलू हैं।
जी, बहुत शुक्रिया। ये थे मुस्लिम स्टडीज के प्रोफेसर, बफेलो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर फैजान हक, जो स्काइप के जरिए इस प्रोग्राम में शरीक थे। आपकी शिरकत का शुक्रिया, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।
बहुत शुक्रिया।
और इससे पहले आपने सुना जर्मनी में पाकिस्तान के साबिक सफीर आसिफ एजदी को, उनके साथ थे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आजिज जमाली, और इब्तिदा में थे हमारे साथ सीपीएलसी यानी सिटीजन्स पुलिस लेजॉन कमेटी के सरबरा अहमद चिनॉय, और उनके साथ थे इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी मतीन हैदर। इस प्रोग्राम के लिए हमारे इंजीनियर्स थे मार्टिन क्रोसियस और रॉब मैकलेन, प्रोड्यूसर्स अरसलान शरीफ और अरीशा खान। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa۔ ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com۔